قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے گھر میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے تربیت پانا شروع کیا ہے، اور ہم نے جس مضمون کو سیکھنا شروع کیا وہ ہے روزمرہ زندگی کے بائبلی آداب، جو ہم زندگی گزارتے ہیں ہر روز، ڈیلی لائف جو ہے، اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی بابت خدا کا کلام ہمیں کیا باتیں سکھاتا ہے، ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے یہ بات پہلی سیکھی کہ والدین پہلے استاد ہیں، پیرنٹس، ماں باپ پہلے استاد ہیں، نہ چرچ کے ٹیچرز، پاسٹرز، نہ سکول کے ٹیچرز اور ایڈمنسٹریشن، نہ نرسری یا پلے گروپ کے جو ٹیچرز ہیں، وہ ایک انسان کے لیے پہلے استاد اس کے ماں باپ ہیں۔ جو چیزیں، جو باتیں وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ہی ان کا وقت سب سے زیادہ گزرتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ پہلا کام ماں باپ جو اولاد کو سکھاتے ہیں وہ دودھ پلانے کے عمل سے شروع ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا، اور اس کے بیچ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی تھی پچھلی بار۔ کھانے پینے کے متعلق خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، پھر ہم نے میل ملاقات، ملنا، ایک دوسرے کی طرف جانا آنا، میل ملاقات کیسے ہونی چاہیے، خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے، یہ باتیں ہم نے سیکھی۔ اور پھر آج ہم سیکھیں گے گفتگو، بات چیت، کنورسیشن، سپیچ۔ بچہ کھانا پینا پہلے شروع کرتا ہے، پھر اس کو کسی کی گود میں پکڑایا جاتا ہے، یہ تیرا چاچو، یہ تیرا ماموں، یہ تیری پھپھو، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیری نانو ہے، یہ تیری دادو ہے۔ سو کھلانے پلانے کے بعد بچے کی میل ملاقات کرائی جاتی ہے، وہ سیکھ لیتا ہے، اور پھر بچہ آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے لفظ شروع کرتا ہے، اور پھر جب 3 سال 4 سال 5 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر پورے پورے جملے، پوری بات کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے۔ ہم سب بات کرتے ہیں، اگر خدا نے کسی کو یہ نعمت نہیں دی کہ وہ بول سکے تو یہ خدا کا اس میں کوئی بھید ہے، خدا کی مرضی ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہم بول سکتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں، ہماری زبانیں ہمیں خدا نے دی ہیں، ہم بات کرتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے کنورسیشن میں کیا چیزیں ہم پر لاگو کرتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، ہمیں سننے کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو بول نہیں سکتا پیدائشی طور پر، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سن نہیں سکتا، کیونکہ ہم بولنا سیکھتے ہیں سننے سے۔ جو مائیں اپنے بچے کو روٹی کی جگہ چوچی سکھاتی ہیں، پانی کی جگہ مم سکھاتی ہیں، وہ بچہ مم کہتا ہے۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں بچہ وہ سنتا ہے اور پھر وہی بولتا ہے۔ بچے کو پیدائشی طور پر نہیں فیڈ کر کے بھیجا جاتا کہ تو نے بابا کہنا ہے، پاپا کہنا ہے، ابو کہنا ہے، ابا کہنا ہے، پتا کہنا ہے، ڈیڈی کہنا ہے، نہیں، وہ پروگرامنگ کے ساتھ نہیں آتا، ماں اسے بتاتی ہے کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں۔ سننے کی عادت اپنائیں، بولنا ہے تو سننے کی عادت اپنائیں۔ جن کو بولنے کا شوق ہو، جن کو تقریر کا شوق ہو، جن کو ڈائیلاگ کا شوق ہو، جن کو کنورسیشن کا شوق ہو، جن کو گفتگو کا شوق ہو، جن کو مکالمے کا شوق ہو، وہ سننا سیکھیں پہلے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا پہلا باب 19 آیت، ہر آدمی سننے میں تیز ہو۔ زبانیں کتنی ہیں ہماری؟ عام طور پہ کہتے ہیں دو زبانہ بندہ، دو اگلا آدمی، دو گلے باتیں کرنے والا، لیکن ہوتی سب کی ایک ہی زبان ہے۔ بولنے کے لیے کتنی زبانیں ہیں، سننے کے لیے کان کتنے ہیں؟ زیادہ سنا کریں، زیادہ سنیں۔ جن کو بولنے کا شوق ہے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے کسی بھی طرح کا، وہ پہلے سننا شروع کریں۔ جو سن نہیں سکتے وہ بول نہیں سکتے۔ उनको हक भी नहीं होना चाहिए बोलने का जो किसी की बात सुन नहीं सकते। आपने किसी की सुनते तो कोई आपकी क्यों सुने। सो पहले सुनने की आदत अपनाएं, अगर बोलना है तो इत्मीनान से, तसल्ली से सुने, तेजी से सुने। यह सुनने का दाम नहीं है कि कोई फोन पे बात कर रहा है तो ध्यान लगा के रखना किससे कर रहा है, मैं सुनने में बड़ा तेज हूं। नहीं, कोई बात कर रहा है, आपसे मुखातब है, आपको एड्रेस कर रहा है, उसकी सुने। सुनने की कोशिश किया करें, जहां भी बात हो रही है सुने। आजकल हमने फबिंग शुरू की है, फबिंग नया लफ्ज है ये कि आपके पास कोई मिलने आया या आप किसी के पास गए तो फोन निकाल के टुक 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 शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड फबिंग। हम तवज्जो नहीं देते, हमारी फोन पे तवज्जो होती है। सुने, अच्छा बोलने के लिए सुनना जरूरी है। जो अच्छा सुनते हैं वो अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि वो सुनते हुए अच्छी बातें पिक करते हैं। अपनी बारी का इंतजार करें। अक्सर होता है सारे एकदम ही बोलते हैं। हमारे टीवी शोज, आजकल टीवी पे टॉक शोज, कोई किसी की नहीं सुनता, सबने अपने अपनी बात करनी होती है। अपनी अपनी बारी पे बात करें। घर में है, किसी प्राइवेट महफिल में है, दोस्तों की महफिल है, रिश्तेदारों की महफिल है, कोई मीटिंग है, इबादत है, कुछ भी है, कुछ भी, कोई भी जगह है जहां आप एक से दो से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, वहां बारी से बात करें। अपनी बारी का इंतजार करें, यहां तक कि खुदा के घर में भी, इबादतों के अंदर भी। खुदा का कलाम यह सिखाता है, करंथियों का पहला खाता बाब नंबर 14, के बारी बारी बोलने वाले भी बारी बारी बोले, दुआ करने वाले बारी बारी बोले। अपनी अपनी बारी का इंतजार करो, जब तुम्हें इजाजत दी जाए, जब कहा जाए तब बोलो। नबी भी है तो अपनी बारी का इंतजार करे, कलाम सिखाने वाला है तो अपनी बारी का इंतजार करे, दुआ करने वाला है तो अपनी बारी का इंतजार करे। आम जिंदगी में भी गुफ्तगु जब हम करते हैं तो हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, और दूसरों को भी बारी देनी चाहिए। ये नहीं मतलब मेरी बारी आ गई तो आप डेढ़ घंटा मैं नहीं बोलना, बस दूसरों को भी मौका दें। गुफ्तगु मुख्तसर और सोच समझ के की जाए। बचपन से सुनते आए हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो। बात जितनी लंबी खींचते जाओगे वो फिर आपसे समेटी नहीं जाएगी। छोटी बात करो। अक्सर लोगों को बड़ा कहानी सुनाने का अंदाज उसका बड़ा अच्छा होता है। मैं यहां बैठा हुआ था, चाय का कप वहां पड़ा था, उधर से भाई याकूब आई, ये कुर्सी पड़ी थी। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बता दो कि भाई याकूब मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने ये बात की है। उनके वो किस गाड़ी पे आए, किस कलर का सूट पहना, कौन सी टाई पहनी थी, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। दो टोक बात करो और सोच के बात करो। अक्सर लोग कहते हैं ओए मुझे पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा ये बात करने वाली भी थी कि नहीं, बस मुंह निकल गई, दसना नहीं, बताना नहीं चाहिए था लेकिन मेरे मुंह से निकल गई। सोचो पहले, पहले बात को तोलो कि कैसी बात है, इसका असर क्या होगा, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, फिर बात करो। खुदा का कलाम सिखाता है मुख्तसर बात करो। लेकिन आप एक दूसरे से जब बात करते हैं तो घंटों घंटे बात करके दूध उबल जाता है, पानी जो भरने के लिए टैप खोली है वो बह रही है, बच्चे कहीं कर रहे हैं कुछ, और जनाब खाना जल चुका है, कुछ दरवाजे पे आके बेल करके चला जा चुका है, आप गाड़ी चलाते हुए ब्लूटूथ हैंड फ्री लगाई हुई है और आपने गलत टर्न ले लिया, आपको पता ही नहीं चला, ओहो बातों में लगे हुए थे। बात मुख्तसर कीजिए और सोच समझ के, पहले सोच लीजिए मैंने बातें क्या करनी है। बोलने में धीरे हों, धीमे मिजाज से बात करें। ऊंची आवाज जानवरों की भी होती है लेकिन वो समझ कुछ नहीं आता। ऊंची आवाज में बात करना बात की सच्चाई और सदाकत का सबूत नहीं है। बात का वजनदार होना ऊंची आवाज से साबित नहीं होता। धीमे लहजे में भी बात की जाए और वजनदार हो, असूल की हो, सच्ची हो, बरकत वाली हो, तरक्की वाली हो, तो असर होता है उस बात का। ऊंची आवाज में ज्यादा बातें करने से कई लोगों को होता है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, या वो किसी ऐसी जगह कारखाने में वर्कशॉप में काम करते हैं जहां मशीनें चलती हैं और उनको हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है ऊंचा बोलने की, क्योंकि दूसरे साथी से बात करने में मशीन का शोर उन्हें बात समझ में नहीं आने देता और वो ऊंची आवाज में बात करते हैं। चलो उनकी तो जेन्युइन प्रॉब्लम समझ आती है सबको कि ये बंदा इंजन के पास, मशीन के पास काम करता है तो इसकी टोन ऊंची सेट हो गई हुई है। हम कोशिश किया करें, बात करनी है तो ये ना लगे हम दोस्त भी बात कर रहे हो, बहने बहने दोस्त आपस में सहेलियां बात कर रही हो, तो किसी को ये ना लगे लड़ाई हो रही है। धीमे लहजे से ठहर ठहर के बात करें। कई लोग होते हैं उनकी बातों की समझ भी नहीं आती, इतना स्पीड से बोल जाते हैं कि उनकी आवाज की समझ ही नहीं आती, उनकी बातों की समझ नहीं आती कि क्या कहते हैं। बात करें अगले को समझ आए, धीमे लहजे में अच्छे निचले सुरों पर बात किया करें। लहजा नरम हो, करख्त सख्त ना हो, नरमी से। हम बच्चों से भी बहुत सख्ती से दृष्टि से बात करते हैं, बहुत तल्ख बिटर हमारा लहजा हो जाता है, हमारा एक्सेंट, हमारा बिहेवियर हो जाता है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग बहुत हार्ड और हार्श हो जाता है, सख्त हो जाते हैं हम बात करते हुए। लहजों में नरमी होनी चाहिए। खुदा का कलाम हमें नर्म मिजाजी सिखाता है, गुफ्तगू करते हुए तमीज, दूसरों के मर्तबे और इज्जत का लिहाज रखें। दाऊद के बारे में लिखा है, साउल को बताया गया कि यस्सी के बेटों में से एक है, वो साहिब तमीज है, गुफ्तगू में तमीजदार है, उसे बड़े छोटे का लिहाज पता है। ठीक है, हम गांव से आते हैं और हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वहां ओए तू करके हम बुलाते हैं। मुझे कोई दुख नहीं होता जब गांव से जो दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, तो वो मेरे लिए भी लफ्ज तू इस्तेमाल कर देते हैं। मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अंदाजा होता है कि अपने घर में, अपने गांव में ये सबको ऐसे ही बुलाते थे। लेकिन हमारी जुबान में, हमारी उर्दू में, हिंदी में बड़े से बात करने के लिए अल्फाज हैं, आप, तुसी, तुआनू, तुआडा, आप, आपका, आपकी, आपके। ये अल्फाज हैं जो हम किसी बड़े के लिए, साहिब इज्जत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओए करके आवाज देने में कोई हमारी इज्जत नहीं बढ़ती, अगले की भी बेइज्जती नहीं होती। हम अपनी तमीज शो कर रहे होते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा हुआ है अपने माँ बाप से, कि शायद हम अपने माँ बाप को भी ओए कह के बुलाते होंगे, इसलिए हम दूसरों को भी ओए कह के बुलाते हैं। तमीज, इज्जत का ख्याल, रुतबे का, मर्तबे का ख्याल रखा जाए कि आप किससे बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात करनी है, उसको क्या अल्फाज कह के बुलाना है। बड़े हम तकलीफ उठाते हैं, हम तो कह देते हैं चल लो अब्बा, तो जब हमारा बच्चा हमें सबके सामने कहता है चल लो अब्बा, तो फिर हमें समझ आती है कि ये मैंने कहा हुआ था, तो कुएं में आवाज जो फेंकोगे वही पलट के आएगी ना। मिसाल है ना कि कुएं में जैसी आवाज हम डालेंगे वही पलट के हमें सुनाई देगी। तो जो हम अपने औलाद के सामने लहजे और रवैये और गुफ्तगू के अंदाज अपनाएंगे, हमारी औलाद वही रखेगी। सो हमें तमीज का ख्याल रखना है कि हम बड़े छोटे से किस तरह बात कर रहे हैं। तंबीह मलामत के लिए सख्त लहजा इस्तेमाल करना चाहिए, ये खुदावंद यीशु मसीह ने भी किया। ए फकीह और फरीसियों, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो। खुदावंद ने उन पर तनकीद की, खुदावंद यस्सू ने उन्हें बुरा कहा कि तुम गलत हो। यहां तक कि यस्सू ने तो हैकल को साफ करने के लिए कूड़ा भी इस्तेमाल कर लिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब आते थे फकीर और फरीसी और शरा के आलम और कौम के सरदार, वो उन्हें कहते हैं सांप के बच्चों तुम्हें किसने कह दिया, क्या आने वाले गजब से बचो। एलिया के बारे में भी है सलातीन की पहली किताब में, जब वो अखियब से बात करता है, कहता है ये मैं नहीं हूं जिसकी वजह से इस मुल्क में अजाब है, इस कौम पे खुदा का अजाब है, ये तू और तेरे काम है कि सारी कौम तेरे गलत कामों की वजह से दुख उठा रही है। अपनी औलाद को सिखाना हो, अपने से छोटों को सिखाना हो, तो लहजे सख्त कर सकते हैं, करने भी चाहिए। जहां आपका रुतबा है बड़ा और सिखाने का, और गलत काम हो रहा है, आप उसे सख्ती से समझाइए, वहां इजाजत है सख्ती की। तो जरूरत के वक्त लहजे को भी सख्त किया जाना चाहिए। बातें बामौका हो, कोई मिसाल देते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, कोई लतीफा, कोई शेर सुनाते हैं, कोई वाकया सुनाते हैं, कोई कलाम की आयत सुनाते हैं, तो बामौका होनी चाहिए। اکثر ہمارے لوگ کسی میت پہ افسوس کے لیے جاتے ہیں، کسی گھر میں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں اظہار افسوس کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے دنیا جہان کی ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ مقام دیکھیے، جگہ دیکھیے، افسوس کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک صرف مثال ہے، با موقع بات۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے، وہ کہاں مارنا چاہیے؟ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ وہ بات جو موقع کے بعد یاد آئے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ موقع پہ بات کریں۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ با موقع باتیں روپہلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں، یعنی چاندی کی کٹوریوں میں، چاندی کے کنٹینرز میں سونے کے سیب ہیں۔ با موقع بات اتنی خوبصورت ہے، اس کی اتنی عظمت ہے اس بات کی۔ وقت پہ بات کریں، جب وقت نہیں بات نہ کریں۔ غیر ضروری سوالوں اور بحث و تکرار سے پرہیز کریں۔ اکثر ہوتا ہے، اچھا پھر پہلا مرغی آئی کے انڈا، فضول بحث ہے۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نہیں نہیں یہ سمجھائیں، یہ کیوں ایسے کیوں ہو گیا۔ تکرار، مقصد تکرار کا ہوتا ہے۔ گھروں میں ہم تکرار کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے تکرار کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھتے، فلم دیکھتے، کوئی پلے دیکھتے، کوئی شو دیکھتے ہوئے آپس میں جھڑپ ہو جاتی ہے۔ میچ لگا ہو تو گھر میں دو لوگ مختلف پارٹیوں کو، ٹیمز کو سپورٹ کریں تو ان میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ فضول بحثوں میں، فضول تکرار سے پرہیز کریں۔ خدا یہ پسند نہیں کرتا، خدا نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کی بھی باتوں کو لے کر فضول میں بحث کریں۔ سوال نکال لیتے ہیں، اچھا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اصل میں پھل کچھ اور تھا، جو کھایا گیا وہ کچھ اور تھا۔ فضول بحث۔ تصویروں میں، موویز میں ہم دیکھتے ہیں کون سا پھل تھا، سیب ہی دیکھتے ہیں نا، تو بائبل میں تو نہیں لکھا ہوا کہ سیب ہے۔ اب میں باغ عدن میں نہیں تھا، آپ میں سے کوئی تھا وہاں پہ؟ کوئی تھا باغ عدن میں؟ کون کون تھا؟ آدم، حوا، خدا ملنے آتا تھا، اور چوتھا شیطان، اور باقی کی مخلوق تھی، وہ انسان نہیں وہ جانور تھے۔ اب وہ پھل کون سا تھا، یہ آدم، حوا، شیطان، خدا اور وہ جانور جانتے ہوں گے، جو آپ میں سے کوئی نہیں ہے اور میں بھی ان میں شامل نہیں ہوں، تو پھر کسی کو کیا پتا کہ وہ پھل کون سا ہے؟ نہیں نہیں، تسی پادری کادے لگے، نہیں وہ بتائیں کہ وہ پھل کون سا تھا، بتاؤ ہاں بلا بھائی۔ فضول بحثوں میں نہ پڑو، یہ میرا فون اچھا، اس کا فون اچھا نہیں ہے، فضول بحث ہے۔ یہ اس کے سوٹ میں یہ چیزیں تھیں، میرے سوٹ میں یہ، اس کی جیولری ایسی، میری ایسی، میری ٹائپنگ اچھی اور اس کی نہیں اچھی، اور میرے شوز اچھے اس کے نہیں۔ فضول بحثیں ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ غیر ضروری سوال ہوتے ہیں فون کی، بھائی صاحب جی سلام، سلام جی کتنے ہو؟ پتہ ہے موبائل فون ہم کہاں کہاں لے جاتے ہیں، کہاں کہاں لے جاتے ہیں، سب لے کے جاتے ہو، ہے نا؟ جب ہم واش روم بھی جاتے ہیں تو موبائل ہماری پاکٹ میں ہوتا ہے، فون آ گیا تو اٹھا لیا، بھائی صاحب کی پیک کر دے ہو؟ فضول سوال ہے نا بھائی۔ آپ نے فون کیا، سمپل یہ کہو کہ اگر یہ مناسب وقت ہے تو میں بات جاری رکھوں، اگر چاہیں تو میں بعد میں کال کر لوں، یہ مناسب بات ہے۔ اگر بندہ بزی ہے تو وہ کہہ دے گا یار تھوڑی دیر بعد کال کیجیے، کی پیک کر دے سو، کی ہو رہا ہے، کی پکائے ہیں، بات وہ کریں جو صحیح ہو، با موقع ہو۔ غیر ضروری باتوں اور سوالوں اور بحث و تکرار سے پرہیز کریں۔ اگر کسی نے آپ کو بتا دیا کوئی بات تو اس پہ یقین کر لیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم اس سے اوپر بحث نہیں کریں گے، سچ بولیں، جھوٹ نہیں، سچ بولنا ہے، سچائی سے بات کرنی ہے۔ جھوٹ بول کے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، خدا کے مجرم ہو جاتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، خدا ناراض ہوتا ہے۔ سچ بولنا، ہر شخص جھوٹ کو چھوڑے، اپنے پڑوسی سے سچ بولنا شروع کرے۔ کہاں پہ ہو اس وقت؟ बस ये सिग्नल बंद है, मैं इस पे खड़ा हूं, और बंदा अभी घर पे होता है। सच नहीं है, हम अभी घर पे होते हैं, बस मैं आया 5 मिनट में आया, और आधे घंटे के बाद वो हाजिर होंगे। झूठ बोला ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। भाई मैं अभी वहां से गुजर के आऊं, कोई ट्रैफिक नहीं थी, मैं तो 12 मिनट में घर पहुंच गया, तू 1.5 घंटा हो गया। सच बोले, छुपाए नहीं। झूठी गवाही और झूठी बात फैलाने से परहेज करें। तो पता है आज क्या हुआ? फोन किया था बच्चों की तबीयत पूछने के लिए, और साथ ही बता दिया, पता तुम्हें इस बात का, पूरी कहानी सुनानी है, पूरी डायरी देनी है, पूरा जनाब मंजरकशी करके कोई 45 मिनट की टॉक करनी है, दो खवातीन ने और दो आदमियों ने आपस में, सिर्फ बच्चों का हाल पूछने के। मैंने कहा आज जनाब कोई फोन कोई मैसेज नहीं आया, मैं पता तो करूं। और सारी कहानियां सुनानी है, झूठ झूठी गवाही झूठी बात फैला देना, परहेज करें। आपने किसी को अगर अपनी आंखों से कोई काम करते और अपने कानों से बात करने सुना है, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाते हैं और वो झूठी निकली, तो आप झूठी बात फैलाने वाले भी हो गए और झूठी गवाही देने वाले भी हो गए। एक लड़का रात को अपने घर नहीं गया, बाप बहुत नाराज हुआ कि तू रात भर कहां था। उसने कहा जी मैं अपने फलां दोस्त के पास था। बाप ने कहा अपने दोस्तों के फोन नंबर दे, तू चुप करके पीछे हो। हर एक को फोन किया तो उसने कहा कि जी हमारे पास था। हर एक ने कहा जी मेरे साथ था, हर एक ने कहा मेरे साथ था। एक लड़के ने तो यहां तक कह दिया कि वो भी सोया हुआ है, अगर कहो तो जगा दूं। झूठी गवाहियां हम दोस्तों के लिए, सहेलियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, प्यारों के लिए दे देते हैं, हमें इससे परहेज करना चाहिए। गुफ्तगू में सफाई, संजीदगी और सेहत कलामी होनी चाहिए। सफाई हो गुफ्तगू में, झोल नहीं होने चाहिए हमारी गुफ्तगू में, कोई ड्रामे नहीं होने चाहिए, उलझाओ नहीं होना चाहिए, घुमा फिरा के बातें नहीं करें हम, टू द पॉइंट मकसद की बात करें और सफाई से बात करें, संजीदगी से बात करें। एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, तो वो लड़का जिसके दादा की डेथ हुई थी, वो कॉलेज गया हुआ था। उसका दोस्त उसे रास्ते में मिला कॉलेज से वापस आते हुए, उसको हंस हंस के कह रहा है, यार तेनू नहीं पता लगा किसी गल का की हो, तेरा दादा मर गया। और इतना हंस रहा है, संजीदा बात थी, उसके दादा की वफात हो गई। उसको बताना चाहिए था, यार शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तेरे दादा इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन वो हंस हंस के बता रहा है, और यूं बता रहा है जैसे कि बहुत बड़ी लॉटरी लग गई किसी की। संजीदगी होनी चाहिए हमारी गुफ्तगू में। मजाक एक वक्त होता है कि जब दोस्त बैठे हैं कोई बात मजाक में करते हैं, हंसी में, लेकिन संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए। और सेहत कलामी यानी ऑथेंटिक बात हो, सच्ची और खरी बात हो, जो बात करें वो अटल हो, उसमें झोल ना हो, सुनी सुनाई बातें ना बताएं, वो बात बताएं जो सच्ची और खरी है और जिसका कोई सबूत हो कि ये दुनिया में साबित की जा सके कि ये बात हुई है। गंदी निकम्मी बेहुदा बातों और लुतरेपन से परहेज करें। ये लुतरापन मैं समझा दूं, इसे गॉसिप कहते हैं, ऐवें मुंह जो गला कड़ी जाए, ओए ओनू छड़ो की, ओए ओ मुन्ना दिखा, ओ केड़ी गल करते हो, गॉसिप, निकम्मी बातें, गंदी बातें, बेहुदा बातें। अगर किसी की कोई बात आपको सचमुच भी पता चल गई है कि फलां की जिंदगी में ये नुक्स आ गया, ये खराबी आ गई, ये गिरावट आ गई, उसके घर में ये हादसा हो गया, फैलाओ नहीं उसे। आपके साथ हो चुका होता तो कोई फैला रहा होता, आपको कितना बुरा लगता। सो हमारी गुफ्तगू गंदी ना हो, निकम्मी ना हो, बेहुदा ना हो, और उसमें गॉसिप लुतरापन ना हो। राजदारी कायम रखें। कोई आपको बताते हैं बड़े एतमाद के साथ अपने घर की कोई बात, और सिर्फ ये कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रही हूं, और वो आगे सहेली को बताएगी ये बात मैं सिर्फ तुझे बता रही हूं, तुझे क्या मालूम कि दोस्त का आगे भी कोई दोस्त है, उसका भी कोई दोस्त है, उसका भी कोई दोस्त है, और बात पूरे इलाकों में फैल जाती है। राजदारी कायम रखें। अगर आपके पास किसी की कोई बात आ गई है तो उसे या तो सिर्फ उसी तक पहुंचाइए, अगर मेरे चेहरे पे कहीं काला धब्बा लगा हुआ है किसी चीज के साथ, वो याकूब भाई को बताने से साफ हो जाएगा। अगर मेरे पोशाक पे कोई गंद लगा हुआ है तो वो राजेश को, बाबर को बताने से, वो देख पादरी तो कपड़े तो की लगा, साफ हो जाएगा। कैसे साफ होगा? मुझे बताओगे आप कि पादरी साहब जरा शीशे सामने जाओ, अपना चेहरा साफ करो या अपने लिबास को साफ करो, बताओगे मुझे तो मैं अपनी वो कमी, वो खराबी, वो गलती दुरुस्त करूंगा। किसी को बताओगे तो वो ठीक नहीं होगी, बल्कि वो फैलेगी, इज्जत नहीं होती। राजदारी कायम रखें और किसी की तहकीर ना करें, किसी को छोटा ना बनाएं, किसी की तजलील ना करें, किसी को इंसल्ट ना करें, किसी के लिए तकलीफ ना पैदा करें अपनी गुफ्तगू से। हम अक्सर कह देते हैं इन्नू छड़ो एक ही, हम छोटा कर देते हैं दूसरों को, उनको हकीर बना देते हैं, अपने से कमतर बनाते हैं अपनी गुफ्तगू में। किसी की तहकीर ना करें और राजदारी कायम रखें, बरकत और तरक्की की के लिए मुफीद बातें करें। जो चीजें मुफीद हैं, जो बरकत वाली हैं वो करें, जो तरक्की वाली बातें हैं वो करें, जिससे किसी का फायदा हो वो करें, किसी का भला हो वो बात करें, ना कि नुकसान, ना कि बेइज्जती हो, ना कि इंसल्ट हो, बरकत वाली बात करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे गोया खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम बरकत वाला है। वही बात करो जो दूसरों के लिए पुरफजल है, फजल से भरी हुई है। तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा कलाम, तुम्हारी बातचीत नमकीन हो, पुरफजल हो, यानी वो अगलों को, सुनने वालों को अच्छी लगे, उनके लिए फायदा मंद हो। और जो बात कहें उस पर कायम रहें, अपनी सौं तो कदी ना मुर्दा पावे काटा खावे, जो बात कह दी तो उस पर कायम रहना, बात कह के मुकर जाना अच्छा नहीं है। अपने कौल पे, अपने वादों पे, अपने अहदों पे, अपनी जुबान से निकली हुई बातों पे कायम रहें। खुदा का कलाम ये सिखाता है, वो बात आपने चाहे किसी इंसान के साथ की है या खुदा के साथ की, आप उस बात पे कायम रहें जो आपने अपने बोल दे दिया, जो आपने अपनी जुबान दे दी, आप उस पे कायम रहें। सो उम्मीद करता हूं कि गुफ्तगू, बातचीत, कम्युनिकेशन के हवाले से खुदा का कलाम जो चीजें हमें सिखाता है, मैं उनमें से कुछ सिखा पाया हूं। खुदा के कलाम की तालीम कभी मुकम्मल नहीं होती, मजीद सीखने की गुंजाइश हमारे लिए मौजूद है इसमें। उम्मीद करता हूं कि आप गुफ्तगू के दौरान, बातचीत करते हुए, कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में इन बातों का ख्याल रखेंगे। और कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करें। जितनी ज्यादा गुफ्तगू करते हैं उसमें गलतियां ही भी उतनी होती हैं। आइए अपने आप को खुदा के सामने पेश करें और उससे कहें कि खुदावन्द तू मेरी जुबान को, मेरी गुफ्तगू को पाक कर दे, वैसा बना दे जैसा तू चाहता है।